हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 14 टेक्स्ट नंबर 26। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए कृपा की आवश्यकता है, इसलिए पूरे ध्यान प्रेम और श्रद्धा के साथ मंगलाचरण करेंगे ताकि कृपा प्राप्त कर सकें और जो हम अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सकें, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसूते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद गीता मात की जय हो। श्लोक नंबर 20 में जब भगवान ने अर्जुन को कहा कि जब देहदारी भौतिक शरीर के संबंधित इन तीन गुणों को लांग देता है, गुणाने तानतीत्यत्रिन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो मृतम अश्नुते, कि जब तीनों गुणों को लांग लेता है तभी वो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के कष्टों से मुक्त हो सकता है और जीवन में ही अमृतत्व को प्राप्त करता है। इतना सुनने के बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से तीन प्रश्न किए। पहला भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा, कैलिंग तीन गुणाने तान अतीतो भवति प्रभु। हे प्रभु, वो तीन गुणों को जो लांग रहता है उसके लक्षण कैसे होते हैं, किमाचरः उसका आचरण कैसा होता है, कथम चैस्तान तीन गुणान अतिवर्तते, कि वो किस तरह से इन तीन गुणों को लांग लेता। अब पहले वाले क्वेश्चन के वो उनके लक्षण कैसे होते, भगवान श्री कृष्ण ने बताया, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। कि उसके लक्षण क्या होते हैं, जब आसक्ति हो, मोह हो या फिर ज्ञान हो, उससे कोई भी उसको उससे डिस्टर्ब नहीं होता है, ना ही उनसे द्वेष करता है और ना ही उनको खत्म करने के लिए कोशिश करता है और ना ही उनके बढ़ने से वो विचलित होता है। यानी कि सत्वगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, उससे कोई उसको डिस्टर्बेंस नहीं होती। और आगे बताए, उदासीन वदासीनो गुणयो न विशाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवम् यो वतिष्ठति नेंघते। कि उसको ऐसा लगता है कि गुण ही अपना कार्य कर रहे हैं और वो उन गुणों से बिल्कुल उदासीन की तरह स्थित रहता है। और दूसरा श्लोक, जो दूसरा क्वेश्चन था कि माचरह, कि उससे उसका आचरण कैसा होता है, तो बताया, आगे बता रहे थे, सुख दुख सम सुख दुख स्वस्थ समलोष्टाष्टम काष्टम तुल्य निंद तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्कृति। यानी कि वो सुख और दुख और लोहा पत्थर सोना सब में एक बराबर होता है। प्रिय चीजें मिलती हैं उसको या अप्रिय उसके सामने आता है, निंदा हो स्तुति हो एकदम समान उसका, ऐसा उसका आचरण होता है कि उसको ऐसा लगता है कि मैं ये शरीर हूं ही नहीं, तो ये सारी चीजें उसको। और सबसे बड़ी बात जो आखिर में 25 में बताया, मानापमानयोस्तुल्यो तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। कि उसको मान मिलता है या सम्मान, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसके जो मित्र होते हैं वो कौन से होते हैं, सिर्फ वही जो कृष्ण भावनामृत में उसकी सहायता करते हैं वो उनसे मित्रता रखता है। बाकी उसके जो तथाकथित जो दुश्मन होते हैं उनसे भी उसको कोई घृणा नहीं होती है। हर तरह के प्रयास के आरंभ को ही त्याग देता है और ऐसा आचरण होता है उसे गुणातीत कहते हैं। अब दो क्वेश्चंस के तो आंसर हो गए, अब तीसरा क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो अर्जुन ने पूछा था, कथम चैस्तान तीन गुणान अति वर्तते, कि वो इन तीन गुणों से किस प्रकार अतीत कैसे हो जाता है और प्रकृति की इन तीन गुणों को कैसे लांग देता है। उसका आंसर भगवान श्री कृष्ण आज के श्लोक में कहते हैं। भगवान कहते हैं, मांसयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवति सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम मतलब भगवान जो कह रहे हैं वो साक्षात खड़े सामने और अपनी तरफ इशारा करते कहते हैं, मेरी माम च मतलब भी यो मने जो व्यक्ति मेरी अव्यभिचारिणी, बहुत ही सुंदर शब्द भगवान ने यूज किया है। देखो व्यभिचारिणी का मतलब पता है ना, जिसके बहुत सारे लक्षण, यानी कि वो एक तरफ नहीं देखती। ऐसी स्त्रियां जो कि मतलब ना, जो एक पति की तरफ नहीं देखती, इस तरह उनको व्यभिचारिणी बोलते हैं। और इसी तरह यानी कि कोई भी मनुष्य जिसको अभी तक अपना लक्ष्य पता नहीं हो, अपना गोल पता नहीं हो, उसको व्यभिचारिणी। लेकिन यहाँ पर शब्द आया है मांचयो अव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिण मतलब बिना विचलित, उसको लक्ष्य पता है। क्या लक्ष्य पता है? मेरी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी भक्ति योगी न सेवता, भक्ति योग ने भक्ति योग से सेवते मतलब सेवा करता है। जो सिर्फ व्यभिचारी मतलब एकमात्र कृष्ण की बात हो रही है, नथिंग एनी अदर अवतार, भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कोई अवतार की भी बात नहीं हो रही है। भगवान ने जब यहाँ पर कह दिया अव्यभिचारिणी भक्ति योगे ना, सिर्फ और सिर्फ जो मेरी भक्ति करता है, सिर्फ मेरी भक्ति के साथ मुझे से मेरी सेवा करता है, उसको क्या, उसके लिए कहते हैं सगुणान। स मतलब वह, गुणान मतलब प्रकृति गुणों से समतीत लांग देता है। एतान इन सब, यानी कि अब भगवान से पूछा ना कि वो किस तरह से लांग देता है, उनको लांगने का क्या तरीका है, तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर और प्रिय उपाय बताया, मांचयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, कि जो अव्यभिचारिणी भक्ति से मेरी सेवा करता है, सगुणान समतीत्येतान, वो इन तीनों गुणों से एकदम लांग देता है, उनको पार कर देता है और किधर पहुंचता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भूयाय ब्रह्म पद तक ऊपर उठा हुआ कल्पते यानी हो जाता है। समझ में आया, भगवान ने कहा है जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त रहता है। भगवान ने साफ साफ बताया है कि कोई चाहे कोई भी स्थिति आ जाए, समस्त परिस्थितियों में वो उसका वो विचलित नहीं होता है, हिलता नहीं है और मेरी पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। देखो यहाँ पर कितना सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने बताया और मैंने पहले भी बताया था, आज श्लोक को देख ही लेते हैं। श्लोक नंबर 7, अध्याय नंबर 7, श्लोक नंबर 7.14। उर्दू पढ़ने वाले निकालेंगे पेज नंबर 280, इंग्लिश रीडर्स के लिए 405, 405 और हिंदी रीडर्स जो हिंदी में पढ़ रहे हैं 251। तो अब देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। वैसे तो प्रकृति के इन तीनों गुणों से, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, दुरत्यया का मतलब होता है इसको पार कर पाना बहुत कठिन है, बहुत बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, लेकिन भगवान ने एक ही तरीका बताया। भगवान ने कहा मामेव, ये जो एव वर्ड होता है ना उसका मतलब होता है इसका और कोई तरीका नहीं होता, एक ही तरीका है, क्योंकि माया कौन है, भगवान की शक्ति, और भगवान ने कहा मेरी शक्ति को पार करना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं माया मेताम, इस माया को तरंतिते पार कर जाते हैं, यानी कि प्रकृति के तीन गुणों वाली मेरी दैवी शक्ति को पार करना बहुत कठिन है, लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। इसका जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें श्री प्रभुपाद ने बहुत अच्छे तरीके से उदाहरण देके समझाया, जो सेकंड पैराग्राफ है ना, गुण का दूसरा अर्थ है रस्सी यानी रज्जो, है ना, उसमें श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है, ये जो गुण है ना ये रस्सी है, जैसे हम लोगों ने फोटो देखा था ना वो के तीनों सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के हाथ में रस्सियां होती हैं, वो जकड़ लेती हैं उस मनुष्य को, उस देहधारी को जो प्रकृति के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पर साफ साफ श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं गुण का मतलब होता है रस्सी, यानी रस्सी से वो जीव जकड़ लेता है, यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाए तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता, यानी कि उसके हाथ भी अगर बंधे होंगे उसके पैर भी बंधे होंगे और उसके आजू बाजू जितने भी होंगे वो भी बंधे हुए होंगे, तो फिर वो कोई एक दूसरे की सहायता नहीं करते, कर नहीं सकते हैं, और उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा हुआ ना हो। ऐसी बात है, क्यों, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए, जो उसकी रक्षा करना करेगा उसके तो हाथ फिर खुलने होंगे तभी तो उसको छुड़ा सकेगा, अतः केवल कृष्ण, यहाँ पर भगवान ने कहा मामेव, केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि जिसको भगवान ने भेजा होगा, जाओ उन सबको खोल के आओ, जो प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं, बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भावबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता, सिर्फ कृष्ण या उनके प्रामाणिक गुरु महाराज, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के ही आदेश को बताते हैं, यानी कि वो भगवान की शरण में लेकर जाते हैं, तो वो ही हमें इस भावबंधन से या इन तीनों गुणों से छुटकारा दिला सकते हैं। भक्ति या कृष्ण भावना अमृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बताई गई है, भक्ति या कृष्ण भावना अमृत सिर्फ, और यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण ने हमें कहा मांच यो व्यभिचारेण भक्ति भक्ति योगी न सेवति। इसी चीज को मैंने शुरू में भी कहा था कि ये अध्याय पूरा इसी की ओर जाएगा, और यहाँ पर आज श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि केवल भक्ति या कृष्ण भावना अमृत ही इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लंघ्य शक्ति को आदेश दे सकते हैं। दुर्लंघ्य शक्ति क्या? मम माया दुरत्यया, जो भगवान की ये जो शक्ति है ना माया, जिसके अंदर तीन गुण हैं, तो वो क्योंकि कृष्ण अधीश्वर हैं, कृष्ण उन सबके मालिक हैं, तो इनको आदेश दे सकते हैं, खबरदार जो मेरे भक्त की तरफ गई। तो ये दुर्लंघ्य शक्ति को श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहितु की कृपा तथा वात्सल्य वश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही सुंदर शब्द श्री प्रभुपाद ने लिखा है वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब होता है वत्स का मतलब पता है आपको? जो गाय होती है ना, उसका जो ताजा ताजा जो बच्चा अभी पैदा होता है ना, उसको वत्स बोलते हैं, गौ वत्स बोलते हैं। और वो जो पैदा हुआ होता है ना, उस टाइम पर वो गंदगी से भरा हुआ होता है, पूरा गंदा लगा हुआ होता है, लेकिन क्योंकि गाय उसकी माँ होती है ना, फिर वो ये नहीं देखती कि कितना गंदा है, वो बस ये देखती है कि इसका मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है रक्षक, तो वो अपनी जीभ से उसको साफ कर रही है, उसके अपराध, उसके जो गंदगी होती है उसको साफ करती है। कई कई बार ऐसा होता है कि मतलब इतना गंदा बच्चा होता है, और लेकिन माँ उसको ये नहीं सोचती कि गंदा है उसको छोड़ दो ये, लेकिन वो अपनी कोशिश से उसको साफ करती है, उसको इस योग्य बनाती है, साफ सुथरा कर देती है। उसी तरह से भगवान यहाँ पर बोलते हैं अहितु की कृपा, उसकी कृपा में भगवान ने कोई हित नहीं रखा कि मैं इस पे इसके ऊपर कृपा करूं तो मुझे ये फायदा होगा, ये नहीं। क्योंकि वात्सल्य है, जैसा भगवान अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, तो जीव को मुक्त कर देने का आदेश देते हैं माया को। कब देते हैं? जब वो भगवान की शरण में जाता है, जब वो भगवान की भक्ति योगे न सेवते। बहुत सुंदर भगवान ने कहा, अव्यभिचारिणी भक्ति, मेरे अतिरिक्त किसी और पे भरोसा करोगे तो मैं सोचूंगा चलो ठीक है, उधर भी गया है तो वहां से कुछ ना कुछ लेकर ही आएगा, जरूरी थोड़ी सब कुछ मैं ही दे दूं, लेकिन खाली जब मेरी शरण होगी। अव्यभिचारिणा माम, भगवान ने कहा माम च यो अव्यभिचारण, जो सिर्फ और सिर्फ मेरी भक्ति करता है, क्योंकि जी मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं वात्सल्य भाव क्यों है, क्योंकि भगवान ने कहा 9.17 में, पिताहमस्य जगतो, मैं आपका पिता हूँ, तो मतलब जो हम हैं वो क्या है? प्रिय पुत्र हैं। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। कि यदि हम माया से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, भगवान की चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। और श्री प्रभुपाद जी आगे भी कहते हैं कि मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र, कृष्ण को ब्रह्म या शिव को नहीं, यानी कि एव का मैंने बताया ना, निश्चित रूप से एक ही की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण, कृष्ण के अतिरिक्त ना कोई अवतार, ना कोई ब्रह्म, ना कोई शिव, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण। क्योंकि ये शक्ति जो है वो किसकी है? भगवान कृष्ण की है। मम माया दुरत्यया, तो मामेव, सिर्फ और सिर्फ मेरी शरण ग्रहण करेगा। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत ही महान और प्रिय विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं है कि वह भद्र जीव को माया के चिंगुल से छुड़ा सके। श्री रूपा जी साफ साफ बोलते हैं कि क्योंकि वो अलग अलग गुणों के अवतार हैं, तो वो सब गुणों को नहीं आदेश कर सकते। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर बताते हैं 1.1 श्रीमद भागवतम 1.1.1, तेने ब्रह्मरिदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, कि भगवान को कहते हैं कि आपने आदि कवि, जो आदि जीव भगवान ब्रह्मा जी हैं, उनके हृदय में ज्ञान दिया, लेकिन फिर भी वो तक आके आपकी माया से मोहित हो जाते हैं, और बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी आपकी माया से मोहित हो जाते हैं। इसी बात को श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, केवल विष्णु ही माया के स्वामी, केवल भगवान श्री कृष्ण ही इस माया के मालिक हैं, अतः वे ही भद्र जीव को मुक्त कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं के अंदर यह पावर है कि वो माया से भद्र जीव को मुक्त करें। आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, वेदों में यानी श्वेता उपनिषद 3.8 में इसकी पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ ये है तमेव विदित्वा, तम मतलब आपको, सिर्फ कृष्ण को, एव मतलब खाली, विदित्वा मतलब जान लेने पर, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को जान लेने पर, उनकी शरण ग्रहण लेने पर ही मुक्ति संभव है। अगर इस मुक्ति, इस माया से मुक्ति पॉसिबल है तो सिर्फ उसका एक ही तरीका है, तमेव विदित्वा, सिर्फ कृष्ण को जानना। शिव जी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। शिव जी स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं, मुक्ति प्रदाता सर्वेशां विष्णु रेव न संशय, मुक्ति प्रदाता यानी कि मुक्ति देने वाले सर्वेशां मतलब सारे लोग, सारे जीवों को मुक्ति प्रदान वाले कौन है, विष्णु एव, एव यानी सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की बात हो रही है, न संशय, और इसमें कोई संशय नहीं है, अर्थात इसमें कोई संदेह नहीं है कि विष्णु ही सबों के मुक्ति दाता है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने 7.14 को पढ़ा, आज हम इसके तात्पर्य में भी श्री प्रभुपाद जी बहुत ही कुछ बताएंगे, जहाँ पर भगवान ने कहा है माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सब सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, जो समस्त परिस्थितियों में अविचल भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग देता है और इस प्रकार ब्रह्म का के स्तर तक पहुंच जाता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर से हमें बताएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप में है। प्रश्न है दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है, यानी कि किस तरह से पहुंचते हैं उस स्थिति पर जिसमें हम तीनों गुणों से पार हो जाते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्योंकि प्रकृति के अंदर तीन गुणों हैं, तो कभी सत्वगुण हावी हो जाता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, तो हम उसी के अंडर कंट्रोल लेकर कार्य करते हैं। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए, उससे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्य में ना लगाकर उसे कृष्ण कार्य में लगाए, यानी कि जो भी गुण आ रहा है, जैसे हमने कल पढ़ा प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्त, यानी कि जो भी गुण आ रहा है उससे द्वेष नहीं करना चाहिए, उससे छूटने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर सत्वगुण है तो सत्वगुण में रहकर भगवान का कार्य करना चाहिए, और अगर रजोगुण है तो रजोगुण को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, अगर तमोगुण है, जैसे हनुमान जी ने तमोगुण को लगाया था और सारी लंका को है ना जला दिया, लेकिन ये तो फिर भी भगवान के सर्वश्रेष्ठ सेवक कहलाए, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में ना लगाकर कृष्ण कार्य में लगाए। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है, जिसमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य होता है। इसमें ना केवल कृष्ण ही आते हैं अपितु उनके विभिन्न पुरुषांश भी सम्मिलित होते हैं, यथा राम तथा नारायण, यानी कि ऐसा जब कृष्ण के लिए हम कार्य करते हैं तो सारे उसके अंदर आ जाते हैं, जो भी भगवान के रूप है, जो भी भगवान के अंश अवतार है, सब उसके अंदर आ जाते हैं। अनेक असंख्य अंश हैं भगवान के, जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूरा अंश की सेवा में प्रवृत्त होता है उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। यानी कि अब श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर उस भगवान की सेवा कर रहे हैं या भगवान के किसी पूर्ण अंश की सेवा कर रहे हैं तो वो भी दिव्य स्थिति पर होता है। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतया दिव्य और सच्चित आनंद स्वरूप हैं। कृष्ण के जितने भी स्वरूप हैं वो पूर्ण हैं और दिव्य और सच्चित आनंद है। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और इनमें से समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। जो भगवान के रूप होते हैं, अब भगवान के अंदर सारे ही रूप है, तो भगवान की आप पूजा करते हो तो सारे उसके अंदर आ जाते हैं। वो सर्वशक्तिमान है और उनमें सारे गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्ण अंश की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है तो वो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना बहुत कठिन है लेकिन वह उन्हें सरलता से पार कर जाता है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये प्रकृति को जीत पाना बहुत दुरत्य अमामे ये, लेकिन जो भगवान की शरण में जाता है वो सरलता से उसे पार कर जाता है। इसकी व्याख्या सातवें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है। अब जैसे हमने की तो श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, याद है ना, अभी की थी। तो कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव से लांगा जा सकता है। एक ही मात्र यही तरीका है, भगवान की शरण ग्रहण करो और माया को पार कर दो। कृष्ण भावना अमृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। अब क्योंकि कृष्ण की भक्ति, अब कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का नाम, कृष्ण के गुण, कृष्ण की लीलाएं, वो दोनों वो सब इक्वल एक ही स्तर पे हैं। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद रूप है और वो सारे जीव परम के अंश हैं, जिस प्रकार सोने के। अब यहाँ पर भगवान ने क्या कहा, सगुणान समतीत्येतान, वो समस्त सारे गुणों को पार कर लेते हैं और ब्रह्म भूयाय कल्पते और ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश हैं, सोना और सोने की खान में से जो कण निकलते हैं उसके अंश हैं, इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है। जितना भगवान के अंदर जितनी क्वालिटीज होती है उतनी जीव के अंदर, किंतु व्यष्टित्व का अंतर बना रहता है, अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न नहीं। अभी व्यष्टित्व का क्या मतलब है कि वो फिर भी उसका एक अपना पर्टिकुलर अस्तित्व है, इनफरादी अस्तित्व है। जीव भिन्न है भगवान का गुण होने के साथ ही, भगवान के समान क्वालिटीज होने के साथ भी उसकी क्वांटिटी कम है और वो अलग रहता है। अगर उसके अंदर समा जाएगा तो भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं। अब मेरे अंदर कोई समा जाए या भगवान के अंदर जो समा जाए तो उसकी भक्ति या उससे प्रेम या उसकी सेवा कैसे कर सकता है, अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान है, भक्त है तथा भगवान और भक्त के बीच में प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अब भगवान है, ये दोनों होना जरूरी है। भगवान होंगे, भक्त होंगे, फिर उन दोनों आपस में प्रेम का आदान प्रदान करेंगे, ये भक्ति योग होता है। लेकिन अगर भक्त जो है वो भगवान के अंदर समा जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, फिर तो खाली भगवान ही भगवान बचा, तो प्रेम का आदान प्रदान कैसे होगा। अतएव भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का व्यष्टित्व वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं। अब देखो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला है, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, कि अगर आप गुणों से मुक्त होना चाहते हो तो मेरी अविचलित भक्ति आपको करनी पड़ेगी। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति का अर्थ क्या है कि अतएव भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का व्यष्टि वर्तमान रहता है, यानी कि दो होने चाहिए, भगवान भी होना चाहिए, भक्त भी होना चाहिए। फिर आपस में वो भले कौन सा भी रिश्ता, सखा भाव हो या वात्सल्य प्रेम हो या फिर ना माधुर्य प्रेम हो, कोई भी शांत भाव हो, लेकिन होंगे तो दो ना, दो होना जरूरी है, अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं होता। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है तो वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक होती हैं, कि यदि आपको राजा का पर्सनल सेवक बनना है तो क्या करना पड़ेगा, आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर कोई ऐसे ही कोई बंदा होगा जिसके अंदर क्वालिटीज नहीं होंगी तो राजा उसको अपना पर्सनल सेवक बनाएगा, नहीं बनाएगा ना। उस तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है, कि वो ब्रह्म बना जाए या भौतिक कलमश से मुक्त हुआ जाए। अब भगवान की सेवा करने के लिए आपको इन भौतिक गुणों से मुक्त होना पड़ेगा। वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म एव सन ब्रह्माप्येत, यानी ब्रह्म एव सन ब्रह्माप्येत। इसका अर्थ ये है कि गुणात्मिक रूप से मनुष्य को ब्रह्म में एकाकार हो जाना चाहिए। गुणात्मिक मतलब जो ब्रह्म की क्वालिटी, अब मनुष्य है उसके अंदर जीव है, आत्मा है, और आत्मा की क्वालिटी क्या है? न जायते मृयते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविताया न भूये अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 2.22 में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे तरीके से आत्मा की ये क्वालिटीज बताई हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि गुणात्मिक आपके अंदर जो ये जीव है उसकी गुण जो है वो आपको विकसित करने पड़ेंगे, कि शरीर को जो भी होता है या शरीर के साथ जो भी ये गुण उसको अटैक कर रहे हैं, लेकिन मैं तो आत्मा हूँ। तो गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म में एकाकार होना चाहिए, कि एक जितने वो उसके क्वालिटीज होने चाहिए। लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर, लेकिन जब आपको अपने रियल गुण, आप अपनी रियल स्थिति में आ जाते हो, कौन सी? जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, में भगवान का अंश हूँ, भगवान का दास हूँ, जब इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में फिर ऐसा नहीं सोचता है कि मैं उसमें मिल जाऊं। वो अपनी इंफरादियत को, अपनी व्यष्टता को, वो जो पर्सनल वो है उसकी अपनी क्या मतलब, वो अपनी आत्मा जो है उसके गुण तो उसको याद हो गए, यानी कि मनुष्य को जब स्मृति आ जाती है कि मैं भगवान का अंश हूँ, तो वो उसके अंदर भगवान की क्वालिटीज वो खुद ब खुद वो बाहर निकलेंगी, क्योंकि वो आत्मा है। जो भगवान के अंदर क्वालिटीज है, आत्मा भगवान का अंश है तो उसके अंदर भी होंगी, लेकिन उसकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उसकी, वो उस अपने रूप में, इसमें बताया मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं है, यानी कि वो अपना एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो नहीं खोता है, और उसी रूप में रहकर भगवान की सेवा, जो भगवान ने कहा है, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। फिर वो क्या करता है? खाली अव्यभिचारिणी भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है, सगुणान समतीत्येतान, और फिर वो इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, कहाँ पहुंचता है? ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। अब मेरा पहले, मैं हम लोग बहुत बारी इस गुणों के विषय में चर्चा कर चुके हैं, मेरा बहुत मन था, आप देखो इस अध्याय का कल लास्ट श्लोक है, मेरा इतना मन था कि आप लोग में से कोई ये क्वेश्चन करे कि यदि भगवान की शरण में आने के बाद गुण अटैक नहीं करते हैं, तो देखा गया है कि जो भक्त होते हैं भगवान की शरण में आते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति योगे न सेवा। देखो भगवान ने क्या कहा कि जो भक्ति से मेरी शरण करते हैं, मेरी शरण ले लेते हैं और अव्यभिचारिणी रूप से मेरी भक्ति करते हैं, वो गुणों को लांग देते हैं। और भगवान ने 7.14 में भी यही चीज बताई, मामे वही प्रपद्यंते माया में ताम तरंती थे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन किसी ने अब तक नहीं पूछा कि फिर भक्तों के ऊपर, भक्तों को माया क्यों अटैक करती है, जब भगवान ने कहा है कि जो मेरी भक्ति करते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, उनको माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और शिला प्रभुपाद ने बोला माया को भगवान आदेश दे देते हैं कि खबरदार जो मेरी भक्तों को अटैक किया, लेकिन फिर भी देखा गया है कि भक्तों के ऊपर भी माया अटैक कर रही होती है, भक्त भी अपने पद से विचलित होते हैं, मतलब कभी ऐसा होता है कि माया उनको परेशान कर रही होती है। क्वेश्चन आपने नहीं किया तो ठीक है, मैं कर देती हूँ, मैं क्वेश्चन बहुत कम करती हूँ, आज आप इस क्वेश्चन का रिप्लाई करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हरि बोल।